Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Vrindavari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा कुंज विहार श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की निरंतरा श्रीमद्भागवतम की वर्ष नंबर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत के पांचवें स्कंद के पहले अध्याय के 24वां श्लोक। अत च दुहितरं प्रजापतेर् विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुहवाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्म रूपवीर्योदरां दश भावयां बभूवकन्यां च यवीयसीमूर्जस्वतीं नाम अथ दैराफ्टर। हिंदी में क्या हिंदी में हिंदी है पढ़िए हिंदी में पढ़िए अनुवाद।
अथ तत्पश्चात च भी दुहितरं पुत्रिको प्रजापतेः प्रजापतियों में से एक की विश्वकर्मणः विश्वकर्मा नामक उपयेमे ब्याह लिया बर्हिष्मतिं बर्हिष्मति को नाम नाम तस्याम उसमें ऊह जैसा कि प्रसिद्ध है वाव आश्चर्यजनक आत्मजान पुत्रों को आत्मसमान अपने ही सदृश्य शील चरित्र गुण गुण कर्म कार्य रूप सुंदरता वीर्य बल उदारान जिसकी उदारता दश दस भावयां बभूव उसके उत्पन्न हुई कन्याम कन्या च भी यवी यसीम सबसे छोटी ऊर्जस्वतीम ऊर्जस्वती नाम नाम की। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बरहिष्मती से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जस्वती था। तात्पर्य, महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करके करने के लिए न केवल राज्यभार स्वीकार किया, वरन प्रजापतियों में से एक प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह भी किया। चूंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की।
आई विल पुट अ ब्रेक एंड स्पीक, थोड़ा थोड़ा बोलते जाऊंगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों से आधुनिक दुनिया में जीने वाले भक्तों के जीवन में क्या क्या ध्येय उनको अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि को प्रभुपाद जी तात्पर्य के द्वारा समझा देते हैं। और हम लोग, हालांकि पुराण 5000 साल के पहले रचित पुराण है, फिर भी आजकल के जमाने में भी इसके कितना लागू होता है हमें पता चल सकता है। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ सची माता को जब मिलते हैं शांतिपुर में, तब बोलते हैं कि माँ, आपने ये शरीर मुझे दिया, इसलिए ये शरीर आपका संपत्ति है, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, आप जिधर रहने के लिए बोलेंगे आप मुझे, मैं उधर रहूंगा, मैं तैयार हूं। और उन्होंने बोला कि थोड़े जोश में मैंने सन्यास ले लिया है, जोश में आकर, क्योंकि वैराग्य अपना कर मैंने सन्यास ले लिया, अभी आपको देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, अनुकंपा हो रहा है, इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आ जाता हूं, नवद्वीप आपके साथ यहां कर रहूंगा, ऐसे बताते हैं। तब ये बात आता है उधर कि कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, अपने नाता रिश्ताओं के बीच में दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल रहेगा भगवा कपड़ा पहनकर, वो मना किया है शास्त्र में। लोग दिखार बोलेंगे, दिखार करेंगे, लोग बोलेंगे कि वैरागी का कपड़ा पहना है, घर में रहता है, इस तरह बोलेंगे, खास करके सन्यासी ब्रह्मचारी ऐसे लोग। जैसे मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, उन लोगों के मठ में ब्रह्मचारी सन्यासी एक बार भगवा कपड़ा पहन लिया, वो रिश्तेदारों को देखते भी नहीं वो लोग। लेकिन हमारे संस्था में ऐसा नहीं है इस्कॉन में, क्योंकि हम सब नाता रिश्ता को भी हम भक्ति में जोड़ते हैं, सबको भी भक्ति मार्ग में जोड़ते हैं, और ये शुष्क वैराग्य का संस्था नहीं है। नाता रिश्ता होने के बावजूद भी हम उनसे आसक्त होकर घर में जाकर नहीं रहते हैं, हम मठ में रहते हैं गुरु के साथ। और एक गरीब किसान का पुत्र हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के आश्रम में सब एक समान है। ऐसा नहीं कि राजा के पुत्र को मुकुट दे देंगे उधर आश्रम में, मुकुट दे देंगे, वो रथ में बैठकर घूमता रहेगा आश्रम में, ऐसा नहीं। तो राजा के पुत्र भी क्यों ना हो, जैसे कृष्ण और सुदामा, कृष्ण है राजा का पुत्र, सुदामा है एक ब्राह्मण का पुत्र, दोनों एक समान ट्रीटमेंट मिलता है उनको। दोनों जाते हैं जंगल में, काष्ठ काट कर लेके आते हैं, कसरत सबको करना पड़ता है, अलग आदर नहीं दिया जाता उनको। इसलिए राजा के पुत्र भी जब जाते थे, उनको गुरु की आधीनता में रहकर इंद्रिय संयम, मन के संयम और सरल जीवन, ऊंचा विचार इत्यादि का प्रशिक्षण लेकर बाद में जब कोई राजा बनेगा तब उसका इंद्रिय मन को जीत लेगा वो, ऐसे। इसलिए आश्रम में जाकर रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा घर में रहेगा, तो अगर सन्यासी भी ब्रह्मचारी भी अगर घर में जाकर रहेंगे तो माता पिता अच्छा अच्छा खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे मोटे हो जाएगा वो। साथ साथ घर में बहुत ऐशाराम होता है, खाएगा पिएगा सोएगा, इंद्रिय निग्रह नहीं रहेगा, नाता रिश्ता आएंगे मिलने के लिए, किसी बुरा संबंध हो जाएगा किसी के साथ, और स्वाध्याय नहीं होगा, और बाकी गंभीर भक्ति करने वाले लोगों का उदाहरण ना होने के कारण वो भटक जाएगा। तो इस तरह इंद्रियों का मन का गुलाम बन जाएगा व्यक्ति, क्योंकि माता पिता का आदत ही होता है बच्चे को पिलाओ खिलाओ सब तरह के ऐशाराम दो। इसके कारण इसलिए बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि अगर कोई साधु बाबा अपने नाता रिश्ता के साथ बहुत समय बिताता है तो दुनिया क्या करेगा, दिखार करेगा। इसलिए वो सही अवस्था नहीं है, ऐसे वो उधर बताया उन्होंने। इसलिए बता रहे हैं कि जब महाराज प्रियव्रत प्रशिक्षा दिव्य ज्ञान में होने के बाद वो जब घर लौट आए वो ब्रह्मा के आदेश अनुसार, तब उनको राज्य कार्य दिया गया, लेकिन राज्य कार्य को उन्होंने ब्रह्मचारी बनकर संभाला नहीं। हाँ बढ़िया।
नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे।
हाँ वो शांतिपूर्वक शब्द बहुत मोटा शब्द है उधर। क्यों शांतिपूर्वक रहना चाहिए? एक था इंग्लैंड में, उसका नाम था एडवर्ड द एट। वो भी राजकुमार था, वो उसको अगले राजा बनना था, युवराज था वो। तो युवराज की अवस्था में, तरुण अवस्था में जब आया, एक वेश्या के साथ उसका आकर्षण था, जो खूबसूरत थी, समय समय उसके पास जाता था और सबको पता था, उसके कोर्ट में भी पता था, लोग भी जानते थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों ने सोचा कि ठीक है तरुण अवस्था है इसका, अभी माता पिता इसको विवाह कर देंगे किसी के साथ तो सेटल हो जाएगा, ये सब नहीं करेगा गलत काम, ऐसे लोगों ने सोचा। क्योंकि क्या होता है, राजा के पास पैसा बहुत होता है, मान सम्मान होता है, बड़ा खानदान है, परिवार है। तो आपको आजकल भी देखने को मिलेगा, आपको जो लोग धनी खानदान में जन्म है वो शराब पीते हैं, बड़े गाड़ी में घूमते हैं, कभी कभी अनेक स्त्रियों के साथ उनका संग हो जाता है इधर उधर, और स्त्रियां भी उनके पीछे पड़ते हैं क्योंकि पैसा बहुत है। ऐसे कुछ लूज कैरेक्टर के स्त्री भी होते हैं जो ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं। इस तरह एक व्यक्ति पैसा ज्यादा होने के कारण उसका चरित्र बिगड़ जाता है। जैसे नरक और मणिग्रीव के संबंध में पढ़ा हमने, उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पैसा बहुत होता है तो पाप कृतियों में जीव लगता है और हिंसा की कृतियों में भी लगता है इसे। तो इसके कारण क्या होता है, वो पाप कर्म का फल प्राप्त होता है, उसको नरक में जाता हुआ इसे। तो इस तरह अहंकार और दुरुक्ति, दुरुक्ति का मतलब है कटु वचन बोलना, इस तरह वो बुरे आदतें उनमें आ जाते हैं बहुत धन दौलत होने के कारण। एक न्यूज आइटम आया था पिछले साल, एक ऐसे एक बड़ा बहुत धनी होटल वाला था वो, पहले उसने एक होटल चालू किया उसने, तो वो होटल इतना मशहूर हो गया, वो होटल आप जाएंगे देखेंगे उधर अनेक देवताओं का फोटो लगाया है, अगरबत्ती घुमाएगा सुबह चालू करेगा बिजनेस, इतना लोग भर जाएंगे उसका होटल को एक्सटेंड करते करते 200 लोग बैठ कर खा सकते हैं उधर, और बाहर और 200 लोग वेट करेंगे, इतना मशहूर हो गया वो होटल। अभी सारे उधर से उसने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके सारे दुनिया में उसके लगभग ऐसे 150-160 होटल हो गए, ऐसे बड़े बड़े होटल, स्टार होटल्स भी हो गए, मशहूर हो गया वो, बड़े जमींदार बन गया, करोड़पति बन गया वो। उसके पास हजारों लोग काम कर रहे थे सारे होटल्स में, तो उसको लगा कि अभी मैं इतने बड़ा हो गया हूँ, सब लोग अपने हाथ में कठपुतली बना लिया, पुलिस को भी, सब लोगों को भी, सब उनकी बात मानते थे। तो सिर्फ जाता था पैसा कलेक्शन करके पॉकेट में डालकर निकलने का उसके लिए। तो कॉलेज के विद्यार्थी, बाहर के लोग सब बाहर खड़े रहते थे, इतना सांभर का सुगंध आता था उधर, मसाला डोसा सांभर का बहुत मशहूर हो गया उनका नाम ऐसे। तो एक समय ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति आकर ज्वाइन किया उसके होटल में। ज्वाइन करते ही क्या हुआ, उसको पता चला उसके वाइफ थी एकदम खूबसूरत थी, वो उससे आकर्षित हो गया। सीधा है वाइफ को इनविटेशन भेजा, बोला कि देखो तुम्हारा पति वो क्या है, साधारण गांव वाला है, पैसा ज्यादा नहीं है। उसका पति का थोड़ा ये भी था, पांव ठीक नहीं था, पांव थोड़ा वो लंगड़ा जैसा है वो, तो उसको डाइवोर्स कर दो, मुझे शादी कर लो, ऐसे उन्होंने ये किया। लेकिन वो पतिव्रता नारी थी वो, वो पति को बोला उन्होंने, हम निकल जाएंगे इधर से, अच्छा नहीं है, ये बड़ा व्यक्ति मेरे ऊपर बुरा नजर डाल रहा है। तो पति ने बोला, तुम होटल में कभी मत आओ, घर में रहो, मुझे अच्छा नौकरी मिला है, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है। तो उसके बाद देखा कि वो इस तरह है, तो पति को बुलाकर बोला, देखो तुमको जो वेतन दे रहा हूँ 10 गुना दे दूंगा तुमको, तुम डाइवर्स कर दो बीबी को, ताकि वो मुझे शादी कर सकती, ऐसे बोला। पति बोला कि नहीं, 10 गुना क्या, 100 गुना भी आप देंगे मुझे नहीं चाहिए, तो अच्छा बीबी है वो पतिव्रता, अच्छा संभालती है मुझे, तो आप इस तरह का विचार मत कीजिए, आपका वायस भी बहुत हो गया, उनका 60 से ऊपर था उनका। बोला कि मैं उपदेश देने के लिए अयोग्य हूँ, फिर भी अच्छा नहीं, आप इस तरह सोचना, उसने बोलकर निकल गया। तो ये व्यक्ति इतना कामुक बना, पैसा बहुत होने के कारण सोचा कुछ भी कर सकता हूँ, तो कुछ गुंडों को लगाकर उसको पिटाई कर दिया, उसको टांग तोड़ दिया, और वो लोग उसको पिटाई करते करते मार भी दिया उसको। जब वो मर गया, हलचल बच मच गया पूरा, सब लोग जानते थे कि इसका उसके साथ दुश्मनी था, उसके बीबी को चाहता था ऐसे। तो न्यूज चला गया और पुलिस लोग इनको बचा नहीं पाए, तो पुलिस स्टेशन में लेके गए, उसको हाउस अरेस्ट में रखा था पहले, बड़ा आदमी ना, हाउस अरेस्ट में रखा था। बाद में कोर्ट में केस चला गया, तो 4-5 साल गया कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, उसको लाइफ लॉन्ग सेंटेंस। लाइफ लॉन्ग मतलब है उम्र कैद बोलते हैं, आजीवन आजीवन। तो वो सेंटेंस मिलते ही इसको हार्ट अटैक आ गया इसको, सोचा कि मेरा इज्जत की बात है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे बड़ा कोर्ट ने ये दे दिया, वो हार्ट अटैक हो गया, मर ही गया वो। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि पैसा अगर किसी के पास बहुत हो, पदवी हो, मान सम्मान हो, यश हो, सब लोग मानते हो, थोड़ा बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। एडवर्ड का ऐसे ही समस्या था, प्रभुपाद जी बोलते हैं एडवर्ड 8, वो स्त्री के पीछे पड़ा था कोई वेश्या के पास। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका विवाह का समय आया, माँ बाप ने विवाह के बारे में बात किया उसके साथ, वो बोला नहीं मुझे इससे करना है, स्त्री से, वेश्या से। तो सब जनता अपोज करने लगा उसको, बोला कि अरे राजा का पुत्र ऐसे एक नीचे गंदा स्त्री के साथ विवाह करने से हमारे देश का इज्जत खराब हो जाएगा। साथ साथ एक डॉक्टर बाल्डविन करके, वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने उनको बोल दिया, देखो सब प्रजा आपके विरुद्ध है, आपको आगे राजा बनना हो तो एक अच्छे परिवार खानदान के स्त्री से आपको विवाह करना पड़ेगा आपको, नहीं तो उन्होंने बोला आपको दो चॉइस है, राजा बनना तो अच्छे माँ बाप चुन कर देंगे आपको उनसे विवाह करने का, अगर स्त्री से वेश्या से करना है आपको तो कीजिए, लेकिन राजपद नहीं मिलेगा आपको। तो आसक्त था उस स्त्री से, इससे उससे शादी किया, वो वेश्या से शादी करके उधर गया। और उसके एक भाई था जॉर्ज द 6th, जो एलिजाबेथ प्रॉपर के टाइम में एलिजाबेथ रानी थी, उसका बेटा था जॉर्ज 6th, तो वो राजा बना। लेकिन 21 साल के बाद इसको अकल आ गया, किसको, एडवर्ड को। उसने पछताया बहुत, अरे क्या मूर्खता है, ऐसे ये वेश्या मेरे साथ भी आती है, किसी और के साथ भी घूमती है, तो उसको अकल आ गया। लेकिन अकल थोड़ा देरी से आया उसको। तो समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरह के प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई बहुत बड़े पदवी में हो, पैसा वाला हो, इस तरह गलत दिशा में इसलिए प्रभुपाद जी पीसफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी ये क्या इसका जीवन पीसफुल रहा, बिगड़ गया ना पूरा, पूरा बिगड़ गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप को एक आश्रम में स्थित रखना चाहिए, तो या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या तो गृहस्थ आश्रम में। इसलिए कुर्म ब्राह्मण को महाप्रभु ने बोला है, देखो कुर्म ब्राह्मण ने जब चैतन्य महाप्रभु को बोला उन्होंने कि आपको देख रहा हूं आप एकदम मुक्त पुरुष हो, नाच रहे हो, गा रहे हो भगवान की भक्ति में, मैं भगवान की कृपा से मुझे बहुत धन दौलत तो बहुत है, बीवी बच्चे हैं, बहुत जमीन है, खेती है, गाय बच रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं तृप्त नहीं हूं इन चीजों में, आप जैसे वैरागी बनना चाहता हूं, ऐसे बताया उन्होंने। तब महाप्रभु ने बोला कभी ना कबू ना कही बा, बोलते हैं कि अरे कभी भी इस तरह तुम मत बोलना, तुम एक गृहस्थ आश्रम में स्थित हो, तुम्हारे बच्चे हैं बीवी है, तो इस आश्रम में स्थिर रह कर तुम भक्ति में साथ साथ तुम दो चीज बोला उन्होंने, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है या तारे देश, वो बोला कि इस तरह तुम इस आश्रम में ही गुरु बनो, लोगों को प्रचार करो और हरिनाम जपते रहो हमेशा, तुम्हारे नादी बे विषय तरंग, तो विषय तरंग तुम्हें बाधा नहीं डालेंगे, तुम विषय तरंगों से ऊपर उठ जाओगे, पत्नी बच्चे पैसा काम काज इतना इत्यादि में तुम आसक्त नहीं हो जाओगे, लुप्त नहीं हो जाओगे, तुम ऊपर उठ जाओगे। ऐसे महाप्रभु बोलकर बोला कि तुम मर्कट वैरागी मत बनो, क्योंकि अभी इन चीजों के बीच में रहते हो, तुम्हारे मन में आसक्ति भी, अगर तुम इसको छोड़कर संन्यास का वेश कृत्रिम रूप से स्वीकारोगे तो क्या होगा, वापिस पतन होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ, गड़बड़ मत करना चाहिए। तो पीसफुल का मतलब है गड़बड़ ना करना, वो पीसफुल है, करेक्ट है ना। तो इसलिए बताते हैं कि यू मस्ट लिव परफेक्टली इन द ऑर्डर, विच मीन्स यू मस्ट लिव पीसफुली विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो देखा जाता है इस दुनिया में जब तरुण अवस्था में कोई आता है उसके शरीर में कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो एक तरह का मन इंद्रिय उत्तेजित होते हैं, उस समय वो दो चीज कर सकता है, या तो अपने थन मन धन वाणी इत्यादि को पूर्ण रूपेण भगवान और श्री गुरु के चरणों में समर्पित भक्ति में अगर करेगा तो उसका पूरा मति उस दिशा में चला जाएगा, वही राष्ट्रीय ब्रह्मचारी रह सकता है। तो राष्ट्रीय ब्रह्मचारी उसके लिए नामुमकिन है। जो व्यक्ति बाहरी बाहर पहन लेता है कपड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर सदा वो स्त्री का स्मरण करता है, दुनिया का स्मरण करता है, दुनियादारी चीजों का प्रजल्प करता रहता है, ज्यादा खाता है, ज्यादा पीता है, ज्यादा सोता है, उसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम नामुमकिन है ऐसे लोगों को। इसलिए जब युवक अवस्था में, कल हम बता रहे थे इसके बारे में, जो वत्सासुर के बारे में हमने बक्सानसुर ठाकुर का लेख पढ़ा, हमने वो लिखते हैं उधर वत्सासुर क्या है। तरुण अवस्था में टीनेज में एक व्यक्ति के अंदर एक तरह का उत्सुकता आता है, जो चीजों को गलत चीजों को किया नहीं है उन्होंने, उन चीजों को करके देखने के लिए एक वेग आता है, थोड़ा एक बार सिगरेट फूंक कर देख लेता हूँ, थोड़ा एक प्याला थोड़ा शराब पी कर देख लेता हूँ, थोड़ा स्त्री के साथ थोड़ा घूम कर आएंगे, थोड़ा और समझ लेंगे स्त्री का शरीर क्या है, इस तरह उसमें एक व्यक्ति को इन चीजों में आकर्षण होता है इस तरह, और लगता है कि अरे माँ बाप बहुत दबाव डालते हैं ऊपर, कभी भाग जाओ, तो एक साल के लिए कहीं और घूम कर आओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ताश खेलो, पैसा कमाओ, कुछ भी करो। तो इस तरह अपने अधिकारियों से मुक्त होकर मनमानी करने की जो इच्छा होता है इसको क्या बोलते हैं, वत्सासुर, ऐसे बोलते हैं, यही वत्सासुर है। जुविनाइल डिलिंक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, टीनेज में आने वाले जो गलत तरह की स्वतंत्रता की इच्छा, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं बक्सानसर ठाकुर, वो बोलते हैं कि उत्सुकता गलत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बछड़ा जो होता है उसके गर्दन में जो रस्सी है उसको निकाल दो, उसको थोड़ा घूमने के लिए छोड़ो, इतना कूद मारेगा वो, देखा आपने, इतना ऐसे उसका पूंछ ऊपर उठाएगा, खुद मार इधर उधर भाग भाग कर सबको दिखाएगा कि मैं अभी क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं फ्री हूं अभी, पहले मुझे पकड़कर बांधा था इधर, अभी हम इधर से उधर उधर से भागता रहेगा ऐसे कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको विश्वास होना चाहिए कि अभी हम असली में हम फ्री है, अभी कोई पकड़ने वाले नहीं है, बाद में पकड़कर बांधने वाले हैं उसको, लेकिन अभी उसको क्या लग रहा है हम मुक्त हो गए अभी। तो वो वत्स के अंदर जो उत्सुकता है वो गलत नहीं है, इसी तरह तरुणावस्था में आने वाले उत्सुकता को भक्तिवंत ठाकुर बोल रहे हैं, कोई उससे वरिष्ठ भक्त जो है उसको क्या कर देना चाहिए, सही लाइन पे लगा देना चाहिए कृष्ण की ओर, वही गुरु का काम है। तो उत्सुकता उसके अंदर जो है, सी देयर इज अ क्यूरियोसिटी है, लेकिन अगर वो क्यूरियोसिटी शास्त्र की ओर जाएगा, वो शास्त्र पठन करेगा, सेवा में रुचि होगा, और मृदंग सीखना है, अच्छा करतार सीखना है, हारमोनियम सीखना है, अच्छा ट्यून गाना है, और भगवान की सेवा करना है, प्रचार अच्छा करना है, और अच्छे अच्छे किताबों को गहराई से पढ़ना है, और गुरु की इच्छाओं को समझकर पूर्ति करना है, गुरु की इच्छा पूर्ति करने के लिए कसरत करना है, पसीना छूटना है, इस तरह अगर कोई करेगा इसमें प्रवेश हो जाएगा, इसमें इतना प्रवेश होना चाहिए कि पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं दुनिया। तो ऐसे व्यक्ति अगर उसके उत्साह का सही दिशा मिल गया उसका, और साथ साथ वो प्रामाणिक होना चाहिए, वो तब वो बच जाएगा इस अवस्था वत्सासुर की अवस्था से। देखिए अनेक देवता लोग भी आसमान से देखते थे वृंदावन में कृष्ण गाय बच्चों को लेकर अपने मित्रों के साथ मुरली बजाती है जंगल में जाते थे, इतना मनोरम वातावरण था, सब वृद्ध गोप और गोपियां भी आकर उनको विदा देने के लिए आते थे सुबह। ये सुंदर भव्य दिव्य दृश्य को देखकर अनेक देवताओं को भी इच्छा हुई कि अरे हम हमारे जीवन कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है, ये ब्रजवासी लोग देखो भगवान की इतना इकट्ठा कर रहे हैं, हम अगर श्वेत द्वीप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विष्णु अंदर समुद्र के अंदर उधर लेटे हैं, किसमें अनंत शेष में लेटे हैं, हम सिर्फ दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनके चमकने वाले शरीर को देखकर सलाम मारकर आ जाते हैं, उनके साथ निकट होकर बात भी करने के लिए नहीं मिलता, ब्रह्मा जी बात करते हैं हम लोग चुप सुनते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ये लोग इतना निकट संकर रहे हैं, इस तरह सोचकर देवता लोग भी अपने रूप को परिवर्तित करके वो भी बछड़े बन जाते हैं और घुस जाते हैं किसके अंदर, गाय बछड़ों के झुंड के अंदर। और ऐसा नहीं कि कृष्ण को मालूम नहीं, कृष्ण बलराम हंसते हैं उसको देखकर, देखो देवता भी बछड़े बनकर घुस गए हैं हमारे रूप के अंदर। तो इस लेकिन वो अच्छे बछड़े थे, वत्सासुर जैसे नहीं थे, ये बात है। तो कृष्ण के बछड़े हैं वो सही बछड़े हैं, क्योंकि योग्य होकर वो जुड़े हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त बछड़े हैं। अभी मिश्रित भक्त बछड़े भी उधर घुसे हैं, कौन हाँ असुर नहीं है, देवता, मिश्रित भक्त बोल रहा हूं मैं, मिश्रित भक्त, देवता लोग मिश्रित भक्त हैं, वो भी घुसे हैं उसमें, जैसे हम लोग उस श्रेणी में हैं, हम भी घुस गए इस काम के अंदर। शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, शुद्ध भक्ति के लिए बहुत ऊंचा स्तर है, फिर भी हमको भी घुसने के लिए मौका दिया गया है, तिलक पहन लो, धोती कुर्ता पहन लो, गाओ नाचो, शुद्ध भावना अभी तक उदय नहीं हुआ है, फिर भी हमको अनुमति दिया गया है उस लीला में भाग लेने के लिए। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का भी बचरा घुस गया, वो कौन, अच्छा तो ब्लैक शीप बोलते हैं, कौन, भक्तिवंत ठाकुर वो बोलते हैं कि ब्लैक शीप कौन है, ये जो वत्सासुर, इसका मतलब है ये गुरु की आधीनता में रहने वाले दो तरह के शिष्य होते हैं, एक है सही पथ को पकड़कर उसके मन में जितना भी विकार उठे वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगा वो, इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गृहस्थ आश्रम हो उसमें लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए, वो पार करना पाप है, तो उसके अंदर जो रहता है रहकर इस तरह हर एक आश्रम में हमारे अंदर जो वेग है उनको आकार देने के लिए मौका है, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारे अंदर जो वेग है उसको परिवर्तित करना चाहिए आध्यात्मिक रूप में, परिवर्तित करके गुरु कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में जैसे बोल रहे हैं इधर शांति से रहना चाहिए, वापस पढ़िए लाइन पढ़िए,
नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे।
अभी साथ बोलता है, अगर क्यों साथ बोलते हैं, कुछ कुछ लोग विवाह करते तो हैं, वो बोलते हैं कि पत्नी को गांव में कुछ स्कूल में नौकरी लग गया, उनको इनको कहीं शहर में नौकरी लग गया, तो ये बीवी इधर रहती है और पति जाता है ये साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में उसका काम है ऐसे, और बच्चों बच्चों को क्या करते हैं किसी हॉस्टल में डाल देते हैं, तो बच्चे माँ बाप की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। अभी पत्नी इधर है, पति उधर है, तो पति उधर रहने अलग रहने के कमाने के लिए रहते हैं ऐसे, कभी किसी और के साथ जुड़ जाते हैं संबंध में, नहीं तो ये किसी के साथ जुड़ जाती है, इसके कारण परिवार में बड़ा घटस्फोट हो जाता है बाद में। इसलिए बोलते हैं कि क्या कैसे रहना चाहिए उनके साथ, विथ वाइफ एंड चिल्ड्रन बोलते हैं, पति पत्नी बच्चे साथ में रहना चाहिए, साथ में रहकर शांति से भक्ति करते हुए, शांति का मतलब है कुछ गड़बड़ नहीं करना, शांति से रहो, इस तरह भक्ति में जुड़ो, शांति में शांति से रहो, और गृहस्थ आश्रम की लक्ष्य जो है उसको पूर्ति करो। जैसे अगपम विरद्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्व अनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, तो उधर नहीं बताया गया संसिद्धिर कुटुंब तोषणम मन तोषणम अहंकार तोषणम इंद्रिय तोषण नहीं बताया गया, क्या बोला गया है हरितोषण। किसी भी आश्रम में हो भगवान हरि के तोषण के लिए काम करो तो शांत जी पाओगे उधर, ऐसे बताते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रभुपाद जी के प्रवचन से एडवर्ड एथ का उदाहरण दिया, क्यों, अगर कोई राज परिवार है बहुत पैसा है तो लोग गलत आदतों में जुड़ने के लिए संभावना है, कुछ लोग विवाह करने के बाद भी गलत काम में जुड़ते हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट था कुछ कोई क्लिंटन था ना, बिल क्लिंटन, प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ पार्लियामेंट हाउस में कुछ गलत संबंध हो गया किसी के साथ, तो वो लोगों ने उनको उतारने के लिए बोला नीचे, वो मना किया, किया नहीं बोला, कोर्ट में लेके गए उसको, वो भी बहुत पैसा खर्चा किया, $9 मिलियन किया, लोगों ने $7 मिलियन किया, अंततोगत्वा कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि गलती उसका था, तभी उतारने के लिए बोला उसको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई बड़े राज पदवी में व्यक्ति हो, अगर वो विवाह करके सेटल नहीं होता, कुछ गलत काम में फंसता हो, तो वो पदवी से भी उतर जाता है नीचे, उसका इज्जत भी उड़ जाता है, इज्जत भी चला जाता है, और लोग सदा बोलते रहेंगे उसके बारे में, यही बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि आगे पढ़िए।
जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी माँ ने दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया।
अगर कोई व्यक्ति तरुण हो, व्यक्ति विवाह किया, कभी विवाह करके, आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे चाणक्य नीति के, उधर चाणक्य बताता है कि अगर किसी पुरुष कुछ गुजर गया हो, पत्नी है लेकिन उनका एक बेटा है, तो अगर पत्नी सोचते कि हमारा बेटा है पांच साल का 10 साल का तो बड़ा होकर मुझे संभालेगा वो, तो उसको विवाह करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रह सकती है, लेकिन वो विधवा को अच्छे अच्छे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए रंग बिरंगे हैं, क्योंकि दूसरों के आंख को आकर्षित करेगी वो, इसलिए एकदम सरल पहने का, साध्वी जैसे पहने का, जैसे तिलक पहन कर माला जपने का, नहीं तो कुछ लोग धाम में भी चले जाते हैं ऐसे है, एकदम शांति से वो जीती है, नहीं तो अगर बेटा नहीं है, उसको बच्चा नहीं हुआ, शादी होकर 1-2 साल में पति गुजर गया, तो उसको क्या करना चाहिए, वो पुनः विवाह कर सकती है, वेदों में भी कोट है, कोई दिखाता है वो है? उस केस में ऐसे है, देयर इज विडो रीमैरिज कोर्ट्स आर आल्सो देयर। अगर इसलिए कुछ लोग सती के बारे में बोलते हैं, वो ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। अभी आप देखते हैं माद्री, वो अग्नि प्रवेश किया, सहगमन किया, लेकिन कुंती नहीं गई, उसके लिए कारण था, क्यों, बाकी बच्चों को संभालना है इसे। अभी द्रोणाचार्य जब गुजर गए, उनकी पत्नी ज्योति कृपी, वो अग्नि प्रवेश नहीं किया, क्यों, उनका बेटा जिंदा था, कौन था, अश्वत्थामा। शास्त्र से पढ़ते हैं, खास करके शास्त्र बोलते हैं कि एक स्त्री को कोई संभालने वाली होना चाहिए, या तो बेटा संभालेगा, नहीं तो विवाह करके दूसरा पुरुष संभालेगा, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अगर अकेले कोई स्त्री रहेगी, कोई रात में रात के समय आकर दरवाजा खटखटाए तो कोई डर जाएगी वो है, अकेले रहेगी तो हाँ उसके लिए सुरक्षा नहीं है। समाज में कुछ गड़बड़ करने वाले पुरुष होते हैं, इसलिए उसको हमेशा एक पुरुष के आश्रय में रहना चाहिए, ऐसे बताया है शास्त्र में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पहले कौन थे, लक्ष्मी प्रिया थी। तो जब वो बांग्लादेश गए थे उनकी विरह में वो गंगा के तट में बैठकर सदा नाम जपती थी, उनके भगवान के स्मरण में उन्होंने शरीर त्याग दिया। वो शरीर त्यागने की बात तो क्या बात है, ये तो अर्धांगिनी है, लक्ष्मी ही है वो है। तो उसके बाद भगवान ने विष्णुप्रिया करके उनसे विवाह किया उनकी माँ के आदेश अनुसार। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को एक स्थिर अवस्था में रहना चाहिए है? क्योंकि अगर कोई सन्यासी नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, आश्रम में घर में रहता है माता पिता के साथ, अगर अकेला रहेगा वो अच्छा नहीं है वो। इसलिए वो माँ ने बोला तुम विवाह करके रहो। तो आगे बढ़िए।
उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में वे सन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी अपनी माँ के अनुरोध पर उन्होंने विचार कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में हूं मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बने रहना नहीं होता, वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना।
गृहस्थित आश्रम ऐसे बताया गया है। तो गृह का मतलब है ये एक पत्नी नहीं होगी, घर में अगर कोई रहता है तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है बोलते हैं। इस तरह पत्नी बच्चे इनके साथ रहकर धार्मिक कार्यक्रमों को पूरा करना चाहिए। अभी एक पुरुष को पत्नी क्यों चाहिए? अगर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो गुरु का ही संपत्ति बन जाता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, वो बैचलर है, बैचलर ब्रह्मचारी नहीं है। देखिए ब्रह्मचारी शब्द में क्या है, ब्रह्मचारी, ब्रह्म का मतलब है कृष्ण, सदा कृष्ण में रमने वाला वो ही ब्रह्मचारी है। तो गुरु के आधीनता में रहेगा तो गुरु ऑलरेडी पहुंचे हुए आत्मा है, वो कृष्ण में रम ही रहे हैं वो। अगर उनके लिए सहायता सहयोग देने के लिए उनके साथ रहता आश्रम में, उनके अनुगामी बनकर इसके अंदर भी ऐसे भावनाएं आ जाएंगे, इसलिए भी ब्रह्मचारी रहेगा। उसका मतलब है हमेशा भगवान में, भगवान के स्मरण में डूबे रहेगा वो। नहीं तो बैचलर जो रहता है अकेले वो ब्रह्मचारी नहीं है। बैचलर का मतलब है विवाह नहीं किया, विवाह ना करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता। उसका स्मरण क्या है, स्मृति क्या है, उसका ध्यान किसके ऊपर है, ये बात है। इसलिए बोल रहे हैं कि इधर अगर कोई घर में रहता है, अकेले रहता है, ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु की आधीनता में नहीं रहता है, गुरु के आश्रम में है, तो उसके लिए खतरा है। खतरा क्या है, मन और इंद्रिय ही खतरा है उसके लिए। इसलिए भागवत के इस कश्यप और द्विती के लीला में आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई राजा बहुत बड़े प्लेग्राउंड के बीच में अकेला खड़ा रहेगा, दुश्मन राजा के सेना आएगा उनको आसानी से उड़ा देगा उनको है? लेकिन अगर कोई राजा एक किला के अंदर रहेगा है? वो सुरक्षित अवस्था में रहता है तो किला में क्या करेगा, अपने सैनिकों को ऊपर खड़ा कर देगा और दुश्मन के ऊपर वो लोग प्रहार करेंगे उधर से। इस तरह एक व्यक्ति विवाह करके वो किला के अंदर रहेगा वो, तो दुश्मन लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो राजा सुरक्षित अवस्था में रहता है। तो ये उदाहरण दिया है उधर। और एक उदाहरण भी दिया है, जैसे पत्नी होती है वो एक नाव जैसा है एक पति के लिए, तो संसार में डूब नहीं जाएगा वो, उसको सुरक्षित रखेगी एक गुणवती पत्नी ऐसे। तो एक विवाहित व्यक्ति के मन में कुछ विकार उठते हैं, इंद्रिय विचलित होते हैं, तो उसका सुरक्षा प्रदान करने के लिए पत्नी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग बोलते हैं मैं आश्रम भी नहीं ज्वाइन करूंगा, बाहर विवाह भी नहीं करूंगा, मैं अकेले रहेंगे, जब इंद्रिय विचलित होते हैं वो चरित्रहीन हो जाएगा, वो चरित्र बिगड़ जाएगा उसका और वो पतन हो जाएगा उसको, तो नरक में जाएगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा वो है। इसलिए इधर बताते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए, एक आश्रम में अपने आप को स्थित कर लेना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इसलिए वहां प्रभु ने बोला कि ठीक, उनका 4 साल था सन्यास लेने के लिए, उस 4 साल में भी उन्होंने सोचा कि विवाह होकर एक पत्नी के साथ रहना चाहिए, मैं तरुण अवस्था में हूँ, अकेले नहीं रहना चाहिए ऐसे। इससे हम लोग एक सीख सीखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर कोई जॉइन करता है। वत्सासुर का मतलब क्या है, वो आश्रम में रहेगा लेकिन किसी का बात नहीं सुनेगा, वो मनमाने करेगा, वत्सासुर है, मनमाने करेगा वो, किसी का बात नहीं मानने का, खुद की इच्छाओं को पूर्ति करना, अपने इंद्र तृप्ति को पूर्ति करना, कुछ भी गड़बड़ करना, ऐसे लोग बाद में निकल भी जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं आश्रम में ऐसे, क्योंकि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो जुड़ता है सर्वप्रथम चीज रिनंसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता को छोड़ देना चाहिए। उसका मतलब है गुरु की आधीनता में रहकर उनके आदेश अनुसार मैंने जीवन चलाना चाहिए, और दूसरा है ऐसे मिनियल सर्विसेज करना चाहिए, एकदम नम्र सेवाएं करनी चाहिए, कि उसके उसको ऐसे सिर्फ व्हाइट कॉलर सर्विस नहीं करना चाहिए। व्हाइट कॉलर सर्विस का मतलब क्या है, जो नाम यश बढ़ाने वाले सेवाओं को सिर्फ नहीं करना चाहिए, ऐसे भी सेवा बैकग्राउंड सर्विस भी करना चाहिए, उससे वो क्या हो सकता है, उसके मन और इंद्रिय को संयमित कर पाएगा, वो अहंकारी पुरुष नहीं होगा वो ऐसे तो। और हमारे अहंकार इंडिपेंडेंस को छोड़ने से क्या होता है, किसी की आदरता में रहने से हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रह पाएंगे, हम उसको पार नहीं करेंगे। अगर हम किसी की बात नहीं मानते हैं, जैसे जो बचरा कूद मारता है इसे, हम भी ऐसे कूद मारते हैं, अगर बचरा सोचता है अगर मैं इधर ही कूद मारता रहूंगा तो ये लोग पकड़ कर बांध देंगे बाद में मुझे, इसलिए मैं कहीं और भाग जाऊंगा, भाग जाता तो गया हाथ से, है ना, ऐसा ही हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि दे वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द रैडर रेंज ऑफ गुरु, देन यू गो आउट ऑफ द रैडर रेंज, क्या होता है, काम खत्म, अभी भक्ति में केयर बढ़ेंगे वो, है वो निकल जाते हैं ऐसे। इसलिए बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, वो एक उदाहरण दिया है कि एक गाय बैल को क्या करते हैं, एक रस्सी से ये बांध देते हैं नाक में, देखा आपने गांव में, अगर वो रस्सी बांध दिया, एक छोटा लड़का भी उसको रस्सी को पकड़कर उसको लेके जा सकता है, क्योंकि वो किसर किंचेगा, उधर जाएगा ना वो, है? ये उदाहरण दिया है वर्णाश्रम के अंदर जो लोग हैं उनके लिए। कथा गावो नसी प्रोता स्तंत्याम बद्धाश्च नाम अभी, ऐसे एक श्लोक है, यथा गावो नसी प्रोतास, गांव के नाक में वो रस्सी बांध दिया, इसका मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हैं वो लोगों को बांध कर रखा है भगवान ने वेदों के वाणी के द्वारा। उसका मतलब है असली धार्मिक व्यक्ति वह है जो शास्त्र के ध्वनि से बंधा गया है, वो है? तो शास्त्र की वाणी से बाहर नहीं जा सकता वो, बोलेगा मरूंगा लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलेगा। अगर कोई शास्त्र के वचन को सुनता नहीं हो उसको क्या चाहिए, शस्त्र चाहिए उसको, दंडा चाहिए उसको। देखिए इसलिए अगर अगर कोई शास्त्र को भगवान जैसे ही मानता हो, गुरु की वाणी को भगवान जैसे ही मानता हो, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि इसके बाहर हम जा नहीं सकते। इसलिए बिल्लो मंगल ने क्या किया आपको मालूम है ना, अपने दोनों आंखों को निकाल दिया उन्होंने, जब उनको एक परस्त्री के साथ आकर्षण हुआ, उन्होंने उनसे ही ये मांगा, सुई मांगा ना, मांग कर अपने दोनों आई बॉल्स को निकाल दिया है, ऐसे करके है, उसको सुनते ही डर होता है ना। तो मतलब क्या है, बाद में वो सन्यासी बन गए वो, उधर वृंदावन में जाकर कृष्ण के महान भक्त बने उसके बाद वो, उनका नाम क्या था, लीला शुक है ना, लीला शुक था उनका नाम, बहुत अच्छे से गीत लिखा उन्होंने, बड़े वैराग्य थे वो। बोलने का मतलब क्या है, इस तरह एक स्थित अवस्था में रहना चाहिए एक व्यक्ति को। पढ़िए
इस श्लोक के तीन शब्द उ ह वाव महत्व के हैं। इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। रेवत महाराज ने सन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से सन्यास मार्ग का कोई संबंध नहीं है, यह कार्य तो भोग मार्ग को बताते हैं। अतः यह विस्मय की बात थी कि सन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग का स्वीकार कर लिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाहोत्सवों में सम्मिलित हुआ हूं। यहां पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने कृष्ण भावनामृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हमने संन्यास क्यों ही न स्वीकार कर रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों में आश्रमों की दिव्य प्रणाली जिसे दैव वर्णाश्रम कहते हैं स्थापित करने में नहीं है। तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए थी। दैव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैव वर्णाश्रम की सारी विश्व में पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है।
तो दो बात बताया गया है, एक प्रियव्रत के बारे में, देखिए अगर गुरु बोलते हैं एक शिष्य को तुम सब त्याग कर पेड़ के नीचे रहो, वैराग्य बनो, अगर वो बोलता नहीं नहीं मैं बड़े महल में रहूंगा, नहीं तो गुरु बोलते हैं चलो तुम राजा बनो महल में रहो, अगर कोई बोलता नहीं नहीं मैं वैराग्य बनना चाहता हूँ पेड़ के नीचे रहूंगा, तो दोनों उसके लिए प्रतिकूल है। इस तरह है, तो इसलिए ये इसको अंग्रेजी में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ एब्नेगेशन, ऐसे बोलते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब गुरु बोलते हैं भोग मत करो त्याग करो अगर भोग करने की इच्छा करना है, गुरु बोलते हैं त्यागो मत अभी ये समय ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, जैसे रघुनाथ दास को बोला चैत्र महाप्रभु ने मरकट वैरागी मत बनो, तुम्हारी घर की जिम्मेदारी अभी भी खींच रहा है तुम्हें, तो रहना चाहिए तुमको घर में, अभी सही समय आएगा तब तुम सब छोड़कर वैराग्य का जीवन जी सकते हो। वही महाप्रभु ने तीन लोगों को बोला, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वही बोला और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी वही बोला उन्होंने, उन्होंने देखा कि उनके माता पिता शुद्ध भक्त थे तो उनकी सेवा करो उनके काल होने के बाद आओ, ऐसे बोला था महाप्रभु ने। तो महाप्रभु जो आदेश दिया वो लोगों ने उसके अनुसार अपने निर्णय लिया, ऐसा नहीं मनमानी किया, उन्होंने नहीं बोला कि आप नहीं छोड़ रहे कहीं और ज्वाइन कर लूंगा मैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने सब छोड़ छाड़ कर छोड़ने के लिए। इसलिए शास्त्र में दोनों चीज बताया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिटैचमेंट, कब जिम्मेदारी लेना चाहिए कब जिम्मेदारी छोड़ना चाहिए, ये दोनों बताया गया है। जैसे 25 में कोई जिम्मेदारी लेता है गृहस्थ आश्रम का, 50 में वो छोड़ता है, बेटे बेटियां बड़ी हो गई घर की बार वो संभालेंगे, तो व्यक्ति को छूट उधर से छूटना चाहिए, अभी पूरा आध्यात्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए उसको पूर्ण रूपेण इसे। तो अभी प्रियव्रत के जीवन में अगर कोई पूछते हैं प्रियव्रत को, प्रियव्रत तुमने ऐसे क्यों किया है? तुम सब छोड़कर वैरागी बने थे, विवाह कर लिया क्या, आसक्ति हो गया क्या तुम्हारा है? तुम वापस लौट आ गए क्या, आश्रम में रह नहीं पाए क्या, स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा क्या है? कोई पूछते हैं ऐसे तो उसको एक ही जवाब देने का, गुरु की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा था तो आ गया मैं बस है? तो अगर वो बोलेगा ब्रह्मा ने आदेश दी, स्वयं मनु ब्रह्मा नारद तीनों मेरे गुरु हैं, वो आदेश दे रहे हैं तो मैं आदेश को स्वीकारा, बस सही पथ में है वो। इस तरह अगर कोई करता है तो इसलिए अगर कोई उनको गलत आरोपण करते हैं तो गलत आरोपण करने वाले के ऊपर दोष आ जाता है, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं। जैसे एक भक्त था मुंबई में, तो आता था आश्रम में आता था, महाराज जी परम पूज्य रानाथ महाराज जी के साथ उनका कनेक्शन था, तो महाराज ने देखा कि कुछ समय के बाद महाराज ने देखा कि वो भी ब्रह्मचारी बनना चाहते थे आश्रम में, उनका नाम था राधा गिरिधारी प्रभु करके, तो पहले कुछ समय के लिए ट्रेनिंग भी लिया उन्होंने, महाराज ने उनके साइकोफिजिकल नेचर देखकर बोला कि देखो यू आर कमिंग फ्रॉम अ वैश्य फैमिली, आपको बिजनेस में रुचि भी है और अगर आप बिजनेस लेकर आपका बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, पूर्ण रूपेण समर्पित आप बिजनेस कर सकते हैं, कृष्ण को दे सकते हैं, यू हैव दोस टेंडेंसीज, इट विल बी गुड फॉर यू. तो तुरंत मान लिया उन्होंने. सो ही बिकेम सन इन लॉ ऑफ दिस थिंग आवर श्रीनाथ जी. श्रीनाथ जी तो उसके बाद उन्होंने एक कंपनी चालू किया अपार इंडस्ट्रीज करके. उस कंपनी के 100% प्रॉफिट उन्होंने डाइवर्ट कर दिया किसको, राधा गोपीनाथ की सेवा में. तो लोग करोड़ों रुपया देते हैं भगवान की सेवा में ऐसे. अभी एक बार वो मीटिंग ले रहे थे बड़े धनी लोगों का, तो तब मैं भी बैठा था उधर. तो वो बोल रहे थे बढ़िया बात. क्या बोला उन्होंने, आप सब बिजनेसमैन हो और अगर मैं आपको बोलूंगा आपके बिजनेस से पैसा दो तो आप हिचक चाहेंगे, तो हम लोग इधर एक भी पैसा नहीं मांगने वाले हैं. आप सब बुद्धिमान हो, हमारा विनती है आपसे कि आप और एक नया बिजनेस चालू करो आपके बुद्धि लगाकर. और सब लोग ताली बजाया, यस हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा प्रॉफिट भगवान कृष्ण को डाइवर्ट कर दो. सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और वो बोले मैंने वो ही किया, ऐसे बोला उन्होंने. मेरे जीवन में ही वैसे किया. मेरा उनका भी खुद का भी कुछ बिजनेस है, लेकिन भगवान के लिए ये कंपनी चालू किया है, उसका पूरा प्रॉफिट भगवान को दे दिया उन्होंने. तो वो बोले कि वो उनके अंदर बोलने के लिए स्ट्रेंथ क्यों है, खुद किया है कर रहे हैं. बोले कि मैं, ये मेरे गुरु महाराज हैं, वो जो बोलेंगे मैं करूँगा. तो उन्होंने बोला मुझे विवाह करके सेटल होकर बिजनेस करने के लिए बोला. उस समय से मैं बिजनेस करके पूरा दे रहा हूँ. अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो मेरे शरीर वाणी सब कुछ गुरु के सेवा में देता था, लेकिन गुरु ने सोचा कि विवाह करके अगर मैं इस तरह करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा. वो मेरे बारे में वो ज़्यादा जानते हैं मेरे से भी ज़्यादा, इसलिए मैंने उनके बात माना है. इस तरह इस भावना के साथ शरणागत हुई है. अभी वो जितना कोई ब्रह्मचारी, वरिष्ठ ब्रह्मचारी जितना प्रसिद्ध है मंदिर में, उतना ही वो भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि गुरु के श्री चरण में जो शरणागत है तो शरण लेने के लिए तैयार है, पूरा अपने जीवन न्यौछावर करता है, वो प्रसिद्ध बनेगा. इसलिए कोई दोषारोपण भी करते हैं प्रेमव्रत के ऊपर तो वो दोषारोपण करने वाला मूर्ख है, वो बात है, क्योंकि वो मनमानी नहीं कर रहा है प्रियव्रत, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, वो देखना चाहिए हमको. और दूसरी बात है, इधर प्रभा जी बोलते हैं कि इस्कॉन में जो करके जैन की बहन थी, वो सैन फ्रांसिस्को में रहती थी, तो एक बार जो आई थी उधर न्यूयॉर्क में अपने बहन जैन को देखने के लिए, तब उनको पता चला कि माइक एंड जैन उनका विवाह होने वाला है. तो माइक एंड जैन बने, बाद में क्या बने, वो मुकुंद महाराज और जानकी माता जी, और जो क्या बने, यमुना माता जी और गुरुदास प्रभु, करेक्ट, हाँ गुरुदास, रोजर बिकेम गुरुदास. या तो ये मैकन जैन के विवाह का दिन जो हुआ तब ये जैन जो थी वो साड़ी पहना था उन्होंने, साड़ी पहना था और अनेक माताएं कुकिंग कर रही थी. प्रभुपाद ने भी कुकिंग किया उनके लिए, अनेक आइटम्स बनाया प्रभुपाद जी. तो उस समय प्रभुपाद जी खुद ही उस विवाह को यज्ञ किया, मंत्र वगैरह उच्चारण करके उनको विवाह करके दिया उनको. तो कुछ लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किया, उनके गुरु भाई यहाँ कुछ लोग बोले कि अरे तुम सन्यासी हो, बहिरागी लोगों को, अपने शिष्यों को पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, आप क्या हो उनको विवाह करके सेटल होने के लिए करते हो. तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा, 18 अध्याय में पढ़ेंगे आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ लोगों के अंदर उनके मनो स्थिति ऐसा है कि विवाह करके वो अच्छा भक्त बन सकते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में अच्छा भक्त बन सकते हैं. जिस व्यक्ति जिस आश्रम में स्थित होकर अच्छा भक्त बन सकता है, हमें उस आश्रम में रहने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए. जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, ये जो गजेंद्र है वो किधर था, वो जमीन में उसका शक्ति ज्यादा है, पानी में कमजोर पड़ता है, और मगरमच्छी को पानी में शक्ति ज्यादा है, जमीन में कमजोर है वो. अगर गजेंद्र बाहर रहता था जमीन में, अब अगर मगरमच्छ पकड़ने के लिए आता था उसको चटनी बना दे देता वो, है ना, टक 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 खत्म हो जाता था वो. लेकिन वो पानी के अंदर वो मगरमच्छ का शक्ति बहुत था. तो इस उदाहरण को लेकर प्रभुपाद जी समझाते हैं, हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि पानी जो है वो सन्यास आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, और जमीन जो है वो गृहस्थ आश्रम है. तो गजेंद्र के लिए किस आश्रम अच्छा था? तो गजेंद्र के लिए जमीन अच्छा था। इस तरह कुछ लोगों को जमीन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग। इस तरह हमें देखना चाहिए, अगर कोई किसी को शक्ति मिल रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, उत्साह, शक्ति और प्रगति है, और इस तरह ये सब हो रहा है उसको, तो उस आश्रम में रहना चाहिए उसको। अगर कोई कमजोर पड़ रहा है एक आश्रम में, तो उसको दूसरा उचित है। जैसे अगर कोई किसी का 40 उम्र हो गया, अभी पत्नी के साथ बड़ा झगड़ा होता है, घर में भी समस्या है उसको, क्योंकि वो बहुत गंभीर बनना चाहता है। ऐसे मैंने परिवारों को भी देखा है, ये सुबह से उठ जाता है 3 बजे, सोलमाला करता है, भागवत पढ़ता है, वो पत्नी बोलते पार्टी के लिए आओ, जाता नहीं, उसको रुचि नहीं है थोड़ा भी। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, बच्चा बेटा बेटी बड़े हो गए तो पत्नी को बच्चों के पास सौंपा कर तो वो वानप्रस्थ ले सकता है। तो एक बार इस ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु बोल रहे थे, वैदिक संस्कृति में कभी डाइवर्स की बात ही नहीं है, डाइवर्स शब्द ही नहीं है बोला उन्होंने वैदिक ग्रंथों में। घटस्फोट इस तरह का नाम नहीं है। घटस्फोट क्या है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है वो घटस्फोट, तालाक बोलते हैं वो उर्दू है, स्फोट करेक्ट, वो तालाक बोलते हैं, तालाक उर्दू है ना, संस्कृत में शब्द ही नहीं है। तो वो बोले संस्कृत में शब्द क्यों नहीं है, वो बोले कि क्योंकि ऑटोमेटिक डाइवर्स है बोला उन्होंने। मैंने बोला ऑटोमेटिक क्या है, तो वो बोले कि पंचशबुर्द्वम वनम व्रजेत, 50 के बाद वनवास में चले जाओ। और वो बोले कि पति अकेले नहीं, पत्नी के साथ जा सकता है, अगर पत्नी को रुचि नहीं है उसमें तो वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है। अभी वो आश्रम में और पत्नी बच्चों के साथ, तो ऑटोमेटिक डाइवर्स बोला उन्होंने। तो घर के झंझट से ऊपर उठकर वो भगवान के ऊपर ध्यान दे सकता है वो। अगर पत्नी को भी रुचि है तो झंझट ही नहीं है, दोनों को रुचि है, दोनों भक्ति में गंभीरता से वो करते हैं, लेकिन 50 के बाद वो किसी भी तरह के संभोग के जीवन में रुचि नहीं लेते, वो पूरा भगवान के ऊपर रुचि लेते हैं ऐसे। तो वो बता रहे थे ऐसे कि वैदिक संस्कृति इतना फर्स्ट क्लास सिस्टम है, वो पक्का सिस्टम है ऐसे। तो इस तरह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हालांकि प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, गुरु हैं, तो उनका कर्तव्य था अमेरिका में कि जो विवाह करके भक्ति में जुड़ना चाहते हैं उनको उस आश्रम में स्थित करना, इसको दैवी वर्ण आश्रम बोलते हैं उसको, तो इसलिए किया। लेकिन वैदिक संस्कृति में कैसे होता था, एक सन्यासी अनेक गांव-गांव में घूमते थे प्रचार काम में, तो हर गांव में सबसे परिपक्व एक गृहस्थ को गुरु बनाते थे। गुरु का मतलब है उनको दीक्षा देकर अपने शिष्य बना देते और उस व्यक्ति को सारे गांव के लिए गुरु बना देते थे। तो जैसे हमारे संकर्षण अधिकारी प्रभु और उनके वाइफ विष्णु प्रेम माता जी हैं, तो इस तरह वैशेषिक प्रभु निराकुला माता जी हैं, इस तरह आप देखेंगे कृतु प्रभु और उनके वाइफ भी हैं, करेक्ट है ना, भारत में भी इस कारण ऐसे गुरु हैं ऐसे। हाँ, और एक गुरु याद आ रहा है आपको कोई, और वीर बाहु प्रभु, यस, और ऐसे इस्कॉन में है ऐसे गुरु हैं जो रविंद्र सर प्रभु ऐसे। तो गृहस्थ आश्रम में हस्बैंड वाइफ दोनों, जैसे शांति पानीमणि और उनके वाइफ, ऐसे गुरु बनते हैं। तो हर गांव में ऐसे गुरु शिष्यों के साथ ही रहते थे, अच्छे अच्छा सिस्टम है ना, क्योंकि कोई शिष्य रो नहीं सकते हैं कि गुरु चले गए अभी मिलते नहीं है, वो भ्रमण सफर कर रहे हैं 10,000 शिष्य, ऐसा नहीं है। तो गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते हैं उस गांव में, लेकिन उनका गुरु सन्यासी होते हैं जो भ्रमण करते हैं अलग अलग गांव में। इस तरह अनेक गुरुओं को ये सिस्टम हमारे हिजोलिनस भक्ति बृहद भागवत महाराज ने प्रपोज किया इस्कॉन में भी, लेकिन उसके लिए अनेक गृहस्थों को गुरु के स्तर पर आना पड़ेगा, उनको वो थोड़ा चैलेंज है। अगर उस स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे तो गांव गांव में एक एक गृहस्थ लीडर बन सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, वो वानप्रस्थ रहेंगे, वो पति पत्नी, तो वानप्रस्थ गुरु ऐसे रह सकते हैं वो। उसके बाद वो भी सन्यास ले सकते हैं, अगर उन्होंने 10-20 साल वानप्रस्थ में बिताया उसके बाद पत्नी को छोड़कर पत्नी भी अपने बच्चों के साथ रह सकती है और वो सन्यास दंडा लेकर परवृजाचार्य बन सकते हैं। और वो भी क्या करेंगे, ऐसे ही अनेक गृहस्थों को गुरु बनाएंगे ऐसे। तो इसलिए बताते हैं कि उस जमाने में क्या होता था, सन्यासियों को विवाह करवाना नहीं होता था। आप जानते हैं कारण क्यों? सन्यासी जो होते थे अपने शिष्यों को मैं शादी में सेटल करने के लिए खुद जाना नहीं पड़ता था। क्यों? हाँ, नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, उसके गुरु ही गृहस्थ हैं। वो गांव में रहता है, उसके गुरु गुरु माता हैं, वो विवाह करके देंगे उसको, वो सेटल करेंगे। वो सन्यासी जो है वो कभी कभी आएगा, वो जब जब आता है पूरे गांव जुड़ जाएगा उनकी कथा सुनने के लिए। तो सन्यासी जो होते हैं वो उनके गुरु के गुरु हैं, ऐसे होते थे। अच्छा सिस्टम है ना ये। तो ये जो वानप्रस्थ है पति पत्नी, वो कितना अच्छा बढ़िया शादी भी करवा सकते हैं उनको। सब जानते हैं क्या क्या करना है, सब बोलेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करके उनको विवाह करके सेटल करके उसके बाद वानप्रस्थ बने हैं। तो वो लोग बहुत इसलिए परम पूज्य रामनाथ महाराज ने क्या किया, ये जो कृष्णचंद्र प्रभु, आदिकेश प्रभु, मुरलीधर प्रभु, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया है, तो ये लोग मैरिज को लीड कर सकते हैं पूरा, पूरे के पूरा। इनको सब गाइडेंस कैसे देना सब मालूम है इनको। तो महाराज जाएंगे 15-20 मिनट प्रवचन बोलकर निकल जाएंगे। तो बोले गृहस्थ आश्रम का क्या क्या धर्म है, वो धर्म को बता देंगे और निकल जाएंगे। तो ये लोग पूरा संभालते हैं। लेकिन प्रभुपाल के जमाने में ऐसे परिपक्व लोग नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्था का शुरुआत था, उनको ए टू सेट पूरा करना पड़ा। कुकिंग भी करके दिया उन्होंने, खुद ही कुकिंग करके दिया। माताओं को साड़ी कैसे पहना मालूम था, प्रभुपाद खुद ही साड़ी पहना, प्रभुपाद जी अपने ऊपर, उन्होंने बोला ऐसे इधर पहनो ऐसे पहन लो, उनको सिखाया। पब्लिक क्लास में उनको सिखाना पड़ा सब कुछ, धोती कुर्ता भी कैसे पहनना, ब्रह्मचार्य गृहस्थों को, ब्रह्मचार्य को सिखाया उन्होंने प्रभुपाद जी ने। इसलिए अमेरिकी भक्त लोग रोते हैं प्रभुपाद के बारे में। आप पूरे बोलिए, प्रभुपाद ने सिखाया हमको कैसे दान सफाई करना, कैसे नहाना, कैसे कपड़े पहनना, कैसे तिलक पहनना, कैसे जपना, सब कुछ ये टू सेट सिखाया उन्होंने। इसलिए कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया प्रभुपाद जी को। लेकिन अभी हमारे संस्था बड़ा हो गया, अनेक गृहस्थ भी परिपक्व हो गए हैं, तो वो लोग भी विवाह में सबको सेटल कर सकते हैं। इस तरह ये तात्पर्य का मूल बात यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने एक आश्रम में स्थित होकर उस आश्रम के अंदर जो विधि विधान है उसको पक्के तरीके से पालन करना चाहिए। तो ये राजा बनने जा रहा है। अभी राजा लोग जो हैं उनको अनेक पैसा हैंडल करना होता है, अनेक कभी कभी अनेक गुंडों को सामना करना पड़ता है, और अनेक समाज के समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। तो ये सब होने के कारण उनको विवाह करके एक पत्नी होगी तो उस आश्रम में स्थित होकर वो ये सब कर सकते हैं। तो आजकल के जमाने में कुछ राजनीति के स्तर पर बड़े बड़े लोग विवाह ना करके वो सिंगल रहते हैं, हमने देखा। तो वो कौन रह सकता है इसे सिंगल, अगर वो सब काम दूसरों से करवाता है, राजकार्य में खुद घुसता नहीं है, वो सिर्फ एक उपदेशक होता है ब्राह्मण जैसे। ऐसे कुछ लोग राजा रहे हैं, जैसे हमारे जनक महाराज, वो खुद भी विवाह किए थे, लेकिन जब वो निष्काम कर्म में परिपक्वता पाया उन्होंने, तब एक ब्राह्मण जैसे ही वो सब काम करवाते थे वो दूसरों के द्वारा। अम्बरीश महाराज भी ऐसे थे, अनासक्त होकर किया ऐसे। तो आजकल के जमाने में अगर कोई राज कार्य चलाना हो लेकिन वो उलझ नहीं जाना चाहिए उन चीजों में, तो उसके लिए आध्यात्मिक तौर पर उसको बहुत प्रगतिशील होना पड़ेगा। सदा उसको सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों के बीच में रहना पड़ेगा, उसको सदा उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गलत कर्म में फंसने की संभावना है। क्योंकि राजाओं को जब युद्ध करके आते थे उनको प्रोत्साहन देते थे कौन, उनको ऊर्जा देती थी कौन, पत्नियां देती थी उनको। इस तरह यज्ञ करना हो तो उनको पत्नी के साथ बैठ कर ही यज्ञ करना है, राजा को अकेला नहीं कर सकता वो। तो आजकल यज्ञ नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उनको बीबी की जरूरत पड़ेगी उनको, नहीं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहना पड़ेगा। क्योंकि गुरु यज्ञ करेंगे, हम पीछे हम समिति लेकर आकर देंगे उनको, बस हमको पत्नी की जरूरत नहीं, हम गुरु को सपोर्ट देंगे हम ऐसे। या तो इस आश्रम में या तो उस आश्रम में, बीच वाला मना किया है खुद की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए ऐसे। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।